पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 13। ओ नमः सिद्धेय, ओ नमः सिद्धेय, ओ नमः सिद्धेय, ओ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वचायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, णमियूणनंतजिणं, अनंतनाणेन दीर्ठ सौवर्ठं, कम्मपदेश विहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक, उसमें हम प्रदेश विभक्ति अर्थाधिकार देख रहे हैं और उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति में स्वामित्व को देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 86 पर आ गए हैं, 86। थोड़ा दोबारा लेते 85 से नीचे से तीसरा लाइन। यहाँ बात चल रही थी सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उत्कृष्ट संचय किसको होता है, तो उसका उन्होंने उत्तर बता दिया था, जो गुणित कर्मांशिक जीव है, जो हमने नारकी के अंत समय में देखा था। उसके बाद 2-3 तीरंज के भाव करके मनुष्य में आता है और फिर जब क्षपणा करता है, मिथ्यात्व की क्षपणा करता है, उस मिथ्यात्व के परमाणु जब अंतिम फाली रूप से सम्यक मिथ्यात्व में टर्न होते हैं, तब उसका उत्कृष्ट संचय है। अब उसी को बताते हैं 85 पृष्ठ पर। इस प्रकार जघन्य गुण संक्रम के कारण परिणामों से क्या बताया, पहले ये जो गुणित कर्मांशिक जीव है वो औषमिक सम्यक तो प्राप्त करता है क्या, यानी वो मनुष्य में आएगा 8वें साल के बाद सम्यक तो प्राप्त करेगा। औषमिक सम्यक तो के काल में जघन्य परिणामों के द्वारा वो करेगा। उत्कृष्ट परिणामों से क्या होता है, गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा होती है, इसलिए जघन्य परिणामों से सम्यक तो प्राप्त कराया। और जघन्य परिणाम से ही गुण संक्रमण भी हुआ, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति जो तैयार होती है उसमें भी जघन्य परिणाम ले लिए। क्यों, आगे चलकर क्षपणा के टाइम में उसको अधिक कराना है, इसलिए पहले अगर कराता है तो पहले निर्जरा बहुत हो जाती है। यही बात बताते हैं, ये इस प्रकार जो हमने पढ़ा था विशेषार्थ में भी और मूल में भी, इस प्रकार जघन्य गुण संक्रम के कारण परिणामों से, कारण यानी कारणभूत परिणामों से, और उसके जघन्य काल के द्वारा यानी गुण संक्रमण का काल भी जघन्य लिया है, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व को पूरित करके, पूरित करना यानी उस रूप परिणमाना, मिथ्यात्व में से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व तैयार हो गई प्रकृतियां, अनंतर यानी उसके पश्चात अंतर मुहूर्त को बिताकर उपशम सम्यक्त के काल के भीतर ही अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करता है, क्योंकि आगे चलकर इसको क्षायिक सम्य दृष्टि बनाना है ना, तो यहाँ पर उसकी विसंयोजना भी करा दी। गुण संक्रमण काल के पश्चात एक अंतर्मूर्त विश्राम यानी कुछ नहीं होगा और फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना।
यह गुण संक्रमण का काल जघन्य बताया है, वहाँ पे तो हमने देखा था अपूर्वकरण अलिंगीकरण का काल फिक्स है।
हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है ना वो कि अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण तो फिक्स है, हाँ। और हम यहाँ कौन सा काल देख रहे हैं,
संक्रमण का,
गुण संक्रमण का। तो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के पश्चात औपशमिक सम्यक तो शुरू होता है, और पहले समय से लेकर गुण संक्रमण शुरू होता है। अपूर्व करण में यहाँ गुण संक्रमण नहीं होता।
अच्छा, तीन बात पूछो।
आठवें गुण स्थान में होता है, परंतु प्रथमोपशम के काल में अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में गुण संक्रमण नहीं होता, उपशम सम्यक्त्व के पहले समय से होता है। ये डिफरेंस है अन्यत्र तीन करण में और यहाँ के तीन करण में। फिर से, हम कभी कहीं भी जहां जहां तीन करण होते हैं वहां अपूर्व करण में कौन कौन सी प्रोसेस विधान होते हैं? एक होती गुण श्रेणी, एक होती गुण संक्रमण, एक होता है स्थिति खंडन और एक होता है अनुभाग खंडन। परंतु जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल है,
ये 26 प्रकृति की सत्ता वाला जीव बता रहे हैं,
कोई भी सत्ता वाला ले लो, तो जो सम्यक प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले जीव के अपूर्व करण में, तीन करण है ना उसके, उस अपूर्व करण में ये चार प्रोसेस में से गुण श्रेणी होती है, स्थिति खंडन होता है, अनुभाग खंडन होता है, परंतु गुण संक्रमण यहाँ पर नहीं होता है। कब होता है? उपशम सम्यक्त्व के पहले समय से एक अंतर्मुहूर्त तक होता है। उसके बाद उपशम सम्यक्त्व का काल अभी बाकी है बहुत सारा। शुरू में गुण संक्रमण होगा, बाद में विद्यात संक्रमण होगा, यानी वो स्लो डाउन होगा उसका प्रोसेस। गुणित प्रमाण में जो संक्रमण होता है, उपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है यहाँ पर, प्रथम उपशम की ही चल रही, परंतु अपूर्वकरण गुणस्थान में कल हमने देखा था, वहां तो ये गुण संक्रमण भी होगा अपूर्वकरण के समय से लेकर, वहां तो होता है, अन्यत्र तो होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में नहीं होता। आप देखना है पंचलब्धि के पुस्तक में भी ये पॉइंट लिखा है कि यहाँ उसका कथन तो करेंगे गुण संक्रमण क्या है, परंतु वहां लिखा है यहाँ पर नहीं होता, इसलिए यहाँ क्या कहते, देखो यहाँ तो दूसरी बात है, एक अंतर्मुहूर्त में गुण संक्रमण होगा, बाद में गुणित प्रमाण में संक्रमण चलता था वो स्लो डाउन हो जाएगा, अभी गुणित प्रमाण में नहीं होगा, यथा योग्य होगा, उसके बाद अंतर्मुहूर्त चला जाएगा, बाद में अनंत अनुबंधी की विषय योजना होगी, उसके लिए भी फिर तीन करण परिणाम होते हैं। मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में संक्रमण होता है, उसी को यहाँ गुण संक्रमण कहा है। देखो, अनंतर अंतर्मूर्त को बिताकर उपशम सम्यक्त्व के काल के भीतर ही, अभी उपशम सम्यक्त्व ही चल रहा है, और यतीर्ष आचार्य के अनुसार उसी काल में अनंत अनुबंधी की विसर्जना हो सकती है। कोई आचार्य कहते हैं कि वेदक में होती, यहाँ नहीं होती, परंतु यह ये प्रथम उपशम है, अभी तो श्रेणी नहीं चढ़ी है उसने, जो हम गुणस्थान की बात कल देख रहे थे समय ज्ञान चंद्रिका में जीवकांड में, अब यहां जो हम देख रहे हैं, देखो जो कल की बात निकालो, ये जो हमने 83 पृष्ठ पर, यानी उन्होंने 82 से 99 पॉइंट से क्या बताया, वो अपूर्वकरण करता है, अनिवृत्तिकरण करता है, उसमें क्या क्या विधान होता है, वो पूरा डिटेल में बताया है। अब 83 पृष्ठ पर नीचे से 3, 3, 6 और 2 आठवीं लाइन में क्या लिखा, अंतरकरण करके अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो जाता है, यानी वो मिथ्या दृष्टि है और उपशम करना कर रहा है, यानी ये प्रथम उपशम की बात चल रही है। यदि द्वितीय उपशम होता तो क्या कहते हैं, वो तो क्षोपशम समय दृष्टि, वो द्वितीय उपशम कर रहा है, मिथ्या दृष्टि अवस्था चल रही है ना, अभी तो शुरू से उन्होंने बताना चालू किया है, प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है तब जघन्य परिणाम से कर रहा है, प्रथमोपशम के काल में जो उसने गुण संक्रमण किया वो भी जघन्य परिणाम से किया है, और उसका गुण संक्रमण काल भी जघन्य था, क्योंकि यहाँ पर अधिक निर्जरा नहीं करानी है,
यहाँ पे ऐसे ही जीव लेना पड़ेगा जो पहले से चौथे गुणोत्सव में जाता है, क्योंकि आगे के गुणोत्सव में जाएगा तो
जघन्य का अर्थ ही वही है, वो चौथे में ही ले जाना उसको, अभी उसने संयम भी धारण नहीं किया है, अभी तो पहले क्षपणा कराएंगे। तो हमने यहाँ तक हम आए थे, अनंत अनुबंधी की विसर्जना करता है, फिर उपशम सम्यक्त्व के काल को समाप्त करके, ये तो हमने कल पढ़ा था, हम दोबारा ले रहे इसको, अभी 86 पृष्ठ पर आए। उपशम सम्यक्त्व के काल को पूरा करके समाप्त करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करके, अभी इसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं ना, वो उपशम का काल उसका उतना ही था, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के बाद उपशम समाप्त हुआ तो वह सम्यक प्रकृति का उदय शुरू हो जाएगा। उसमें अंतर्मूर्त काल तक ठहर कर क्षोभम सम्यक्त्व का भी मिनिमम काल कितना है, अंतर्मूर्त। अभी इसको गिराना नहीं, इसको तो क्षपणा करानी है, दर्शन मोह की क्षपणा करानी। दर्शन मोह के क्षपण का प्रारंभ करता हुआ तीनों करणों को करता है, फिर दोबारा तीन करण, पहले तीन करण किए दर्शन मोहनी की उपशमना की, दोबारा तीन करण किए अनंत अनुबंधी की विसर्जना की, फिर क्षोभम सम्यक् दृष्टि होके अंतर्मूर्त के बाद फिर तीन करण परिणाम किए, अभी दर्शन मोहनी की सपना हो जाएगी।
इसे अनंतानुगति की विसर्जना करेगा तो वापस तीन करण होना ही,
वापस मिथ्यात्व का संक्रमण करने के लिए तीन, फिर अंतर्मूर्त रुकेगा, फिर तीन करण परिणाम करेगा तो सम्यक मिथ्यात्व को टर्न करेगा।
पर ये प्रथम ऑप्शन के काल में वापस तीन 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 करण मान,
हाँ प्रथम, इसीलिए प्रथम ऑप्शन का काल केवल शुद्धोपयोग का काल है ऐसा नहीं समझना, करणानुयोग शुद्धोपयोग वगैरह कुछ नहीं कहता, करणानुयोग तो तीन करण परिणाम होते ऐसा कहेंगे, यानी उसमें विशुद्धि इतनी बढ़ती है उसको तीन करण परिणाम कहेंगे वहां पर, उसमें शुद्धोपयोग करता है शुभोपयोग करता है वो बात करणानुयोग नहीं कहता, वहां तो शुद्धोपयोग 12वें में होगा करणानुयोग में। हाँ ऐसा करता हुआ, सेकंड लाइन समाप्त हुई, वहां अधप प्रवृत्त करण को करके पीछे अपूर्व करण को करता हुआ, वहां भी तीन करण होते हैं ना, तो शुरू में अधप प्रवृत्त हो गए फिर अपूर्व करण, जघन्य परिणामों से ही गुण श्रेणी को करता है, यहाँ भी जघन्य, क्योंकि गुण श्रेणी में अधिक द्रव्य दिए जाए तो निर्जरा अधिक हो जाएगी, तो जो शुरुआत की है यहाँ भी जघन्य परिणामों के द्वारा की, जिससे थोड़े द्रव्य की निर्जरा हो, तथा सम्यक्त्व प्रकृति के अपकर्षित द्रव्य में, सम्यक्त्व प्रकृति में भी गुणश्रेणी होती है, उसका भी निशेकों में से द्रव्य अपकर्षित होता है नीचे आता है, उस द्रव्य में असंख्यात लोक का भाग देकर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को उदयावली के अंदर गोपुच्छ के आकार रूप से निक्षेपण करता है, क्योंकि उस प्रकृति का उदय है। हमने देखा है जिसका उदय है उसके द्रव्य को तो उदयावली से दिया जाएगा, और जिसका उदय नहीं है उसको उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं उदयावली में किस तरह से दिया जाता है, एक एक क्षय घटता हुआ, उसको कहेंगे गोपुच्छाकार, अर्थात जैसे गौ की पूंछ क्रम से घटती हुई होती है वैसे ही एक एक क्षय घटता क्रम से निषेकों की रचना उदयावली में करता है। ये उदयावली की बात, जितना अपकर्षित द्रव्य है उसको असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग तो उदयावली में दिया, और बाकी बचे अपकृष्ट द्रव्य को उदयावली से बाहर गुणश्रेणी के आकार रूप से स्थापित करता है, अर्थात ऊपर ऊपर के निषेकों में असंख्यात गुणे द्रव्य का निक्षेपण करता है। ये गुणश्रेणी की बात हमने कल विस्तार से देखी ना, यह तो उदय प्राप्त सम्यक्त प्रकृति की गुणश्रेणी रचना का क्रम हुआ, जो उदय रूप है उसमें क्या होता है वो बता दिया, परंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य को उदयावली के बाहर ही गुणश्रेणी के आकार रूप से निक्षेपण करता है, क्योंकि उनका उदय नहीं है, वहां परमाणु नहीं, ये बात नहीं कही, निषेक भले पड़े हैं परंतु उदीर्णा होकर उदयावली में देने का कार्य यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उसका उदय नहीं है। जिसका उदय होता है उसी के उदयावली में माल दिया जाता है। इनका उदय नहीं है, सम्यक्त्व का उदय है, सम्यक प्रकृति का। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो उसका जो अपकर्षित द्रव्य है उसके उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी रूप से रचना होती है। तथा गुण संक्रम के द्वारा उसमें और क्या होता है, एक तो गुण श्रेणी होती है और गुणित प्रमाण में संक्रमण होगा। तो गुण संक्रम के द्वारा प्रति समय मिथ्यात्व को सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में संक्रांत करता है। यहां तक हमने कल पढ़ा था, अब आगे। इस प्रकार अपूर्वकरण के काल को बिताकर, अपूर्वकरण में तो यही प्रोसेस चलता रहता है, इस काल को बिताकर अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग बीतने पर दुरापकृष्टि नाम की स्थिति की उत्पत्ति होती है। यह स्थिति की उत्पत्ति होती है का अर्थ क्या है? यहाँ पर कौन कौन से चार प्रोसेस बंद रहे थे? गुणश्रेणी, निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। तो स्थिति कांडक घात भी यहाँ हो रहे थे, तो स्थिति घट रही थी ना, तो घटते घटते कितनी हुई? तो दुरापकृष्टि नाम का जो स्थिति का भेद है वहां तक हो गए, उसको बताएंगे अभी।
नहीं,
सम्यक प्रकृति और ये सभी तीनों की हो जाएगी। विसर्जना हो चुकी, दर्शन मोहनी के सपना के तीन करण चल रहे हैं। मिथ्यात्व को सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित होने का कार्य भी चल रहा है, उसकी गुणश्रेणी भी बन रही है। सम्यक प्रकृति की गुणश्रेणी उदयावली में माल देकर ऊपर गुणश्रेणी है, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व गुणश्रेणी उदयावली के ऊपर है। गुणश्रेणी तो है ही है, अब उसका गुण संक्रमण भी चल रहा है। उसी समय स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात भी हो रहे हैं उसमें, जो यहाँ नहीं लिखे है विस्तार से, परंतु ये भी प्रोसेसेस वहाँ होते हैं। तो स्थिति कांडक घात होने से और नया स्थितिबंध अल्प होने से दोनों ही चल रहा है। यदि नया स्थितिबंध अधिक होता तो स्थिति बढ़ती चली जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ विशुद्ध परिणाम है वहाँ जो स्थिति है उससे कम स्थिति बनती है। अब इसमें से स्थिति कांडक घात होते चले जाते हैं, तो कांडक होते होते दुरापकृष्टि नाम की स्थिति रह जाएगी। इतना तो ख्याल में आए ना, इसलिए वहां से लेकर दुरापकृष्टि स्थिति के असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत से खंडों को मिथ्यात्व के द्विचरम स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक अंतर्मूर्त के द्वारा घातता है। क्या कहना चाहते हैं? दुरापकृष्टि होने के पहले क्या होता था? पल्ले का असंख्यात भाग जितना एक एक बार कांडक होते थे। अब इतनी यहाँ जितनी स्थिति बाकी रही है, अब क्या होगा? जितनी स्थिति है उसके असंख्यात भाग करेंगे, और असंख्यात भाग शेष रहेगा, और असंख्यात बहुभाग इतना कांडक होगा। दुरापकृष्टि की विशेषता क्या है? इसके बाद जो स्थिति कांडक होंगे, पहले स्थिति कांडक घात कैसे होते थे? बब संख्यात भाग या असंख्यात भाग ऐसे कांडक होते थे। अब कांडक का प्रमाण असंख्यात बहुभाग हो जाता है। हाँ, परंतु यहाँ असंख्यात गुणहानि हम स्थिति कांडक में कैसे लगाएंगे? कांडक के अंतिम फाली में हो जाएगी असंख्यात गुणहानि। हाँ, अंतिम फाली में, तब तक तो निषेक बने रहते हैं। जब तक एक फाली, दो फाली, तीन फाली, यहाँ क्या लिखा है फिर पढ़ते हैं। ये जो दुरापकृष्टि नाम है उसके बाद मिथ्यात्व के अंत, नहीं नहीं उसके ऊपर, वहां से लेकर दुरापकृष्टि नाम की स्थिति की उत्पत्ति होती है नीचे से छठी लाइन में। वहां से लेकर दुरापकृष्टि स्थिति के, यानी अभी यहाँ जितनी स्थिति है उसके असंख्यात अगर हम खंड करेंगे तो एक कांडक का प्रमाण कितना होगा? असंख्यात बहुभाग। और उसका खंडन होने के बाद बचेगा कितना? असंख्यात वा भाग बचेगा। और ये खंडन कांडक घात होने के लिए समय कितना लगता है? एक अंतर्मूर्त। यही कहा, देखो असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत से खंडों को यानी बहुभाग को मिथ्यात्व के द्विचरम स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक अंतर्मूर्त के द्वारा घाता है। इसका अर्थ होता है इसके स्थिति कांडक घात होते चले जाते हैं, एक एक स्थिति कांडक घात में असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग का घात होता है और एक एक स्थिति कांडक घात के लिए अंतर्मूर्त लगता है। ऐसे दूसरा स्थिति कांडक, तीसरा स्थिति कांडक, चौथा स्थिति कांडक, कहां तक? द्विचरम स्थिति कांडक घात तक। यहां तक बात ख्याल में आई? उसके बाद मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करता हुआ, अभी अंतिम स्थिति कांडक है ना, अब उसको ग्रहण करता हुआ उदयावली के बाहर ही ग्रहण करके अंतिम स्थिति कांडक की फालियों को सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित करता है। अब क्या है, उसका एक ही कांडक बचा है, अब उसमें एक एक फाली को संक्रमित करता है। अभी नीचे कैसे आएगा, उसका अंतिम स्थिति कांडक है, वो स्थिति कांडक के द्वारा जैसे स्थिति कांडक करके क्या होता था, पहले नीचे आते थे, अब नीचे नहीं आएंगे, वो मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व रूप से टर्न हो जाएंगे। एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, चौथी फाली,
एक आवली प्रमाण तो निशेक बाकी रह जाएंगे मिथ्यात्व के, क्योंकि वहाँ पे पीछे एक एक निशेक का संक्रमण होता है।
उदय रूप नहीं होगे ना वो तो?
नहीं, उदय रूप नहीं है, पर उदय के ऊपर
हाँ वो रह ही जाएगी उसके, परंतु फिर भी उसमें मेजोरिटी नहीं ना द्रव्य। द्रव्य कहाँ पड़ा है? अंतिम कांडक में है। पहले कांडक घात होते तो क्या होता था, ऊपर का द्रव्य नीचे नीचे आता था, तो मेजोरिटी द्रव्य कहाँ पर है? उन्हीं निषेकों में पड़ा है। अब ये जो अंतिम स्थिति कांडक का द्रव्य है, मेजोरिटी उसी में द्रव्य है। एक फाली गई, दूसरी फाली गई, तो हमेशा पहली फाली से दूसरी फाली असंख्यात गुणी, उससे तीसरी फाली असंख्यात गुणी। मान लेते हम 10 फालियां होगी, तो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी असंख्यात गुणी होती है, और पहले से 9वें तक की टोटल करेंगे उससे भी 10वें में असंख्यात गुणा द्रव्य होता है। इसलिए अंतिम फाली का द्रव्य मैक्सिमम होता है, यही बात यहां बताते हैं कि अंतिम स्थिति कांडक की फालियों को सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित करता है। इस प्रकार संक्रमण करते हुए जब मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत होती है, तब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम माल उसी में था ना, और वो सारा का सारा सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, क्योंकि उस समय अपना असंख्यात्व भाग कम मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित हुआ पाया जाता है। इसी वाक्य में वो अर्थ गर्भित है जो मैंने आपको बताया। क्या हुआ, अपना असंख्यात्व भाग कम, यानी अभी तक जो मिथ्यात्व में से संक्रमण हुआ वो उसका असंख्यात्व भाग ही चला गया है। कितना वो उपशम सम्यक के काल से वो सारा ही संक्रमित होते होते चला आया है, फिर भी उसका अभी तक असंख्यात्व भाग ही संक्रमित हुआ है, बाकी बहुभाग तो अंतिम फाली में पड़ा है। तो उस समय अपना असंख्यात्व भाग कम मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित हुआ पाया जाता है। अर्थात चूंकि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य का असंख्यात्व भाग तो सम्यक रूप हो जाता है और गुणश्रेणी के द्वारा निर्जीर्ण हो जाता है, शेष बहुभाग द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है। असंख्यात्व भाग उन्होंने सम्यक रूप बताया है और बाकी तो पहले से वो सम्यक मिथ्यात्व रूप टर्न होता ही आया था। मैंने तो फाली की अपेक्षा बताया, यहाँ तो पहले समय से जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होता आया था उसमें भी हर समय में सम्यक मिथ्यात्व में असंख्यात गुणा द्रव्य था और सम्यक प्रकृति में असंख्यात्व भाग था। असंख्यात गुणा और फिर पहले से 9वें तक की जितनी टोटल होगी उससे 10वें में असंख्यात गुणा स्वयंभ्रमण समुद्र। अतः उस समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होने से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। अब शंका, मिथ्यात्व का जो द्रव्य सम्यक रूप से संक्रांत होता है तथा जो द्रव्य अपकृष्ट होकर गुणश्रेणी के द्वारा गल जाता है वह सब द्रव्य मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो कहते आगे कहे जाने वाले प्रदेश विषयक अल्प बहुत्व को बतलाने वाले सूत्र से जाना जाता है। आगे इसका अल्प बहुत्व आने वाला है, वहां से जाना जाता है। और मैंने जो बात बताई, हमने पहले जो पढ़ी थी लब्धिसार आदि में, उसके आधार से बताई आप, यह उक्त सूत्र का भावार्थ है। विशेषार्थ, सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संचय गुणित कर्मांश वाले दर्शन मोह के क्षपक को बतलाया है, क्षपक के बतलाया है। अतः गुणित कर्मांश वाले मिथ्या दृष्टि के उपशम सम्यक तो उत्पन्न कराकर क्षायोपशमिक, क्षाप हुआ है ना, क्षायोपशमिक। मेरा प्रश्न है, एक गुणित कर्मांशिक वाले को सादी मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं लेना है?
तो वहाँ पे तो गुणश्रेणी हो जाएगी।
हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि अगर लेते हैं तो उसका गुणित कर्मांशिक पना कैसे घटित होगा? क्योंकि सम्यक्त के काल में गुणित कर्मांशिक कैसे होगा वो? क्योंकि बार बार उसको सातवें नरक में लाया है, बार बार उसको संकलेश परिणाम कराया है। यदि बीच में सम्यक्त हो जाता तो उसकी निर्जरा हो जाती ना, उसको गुणित कर्मांशिक कौन कहता? टॉप मोस्ट से थोड़ा कम हो जाता वो, इसलिए इसको उपशम सम्यक तो प्राप्त कराया। हमें सोचना चाहिए उपशम सम्यक तो क्यों कहा होगा, नहीं तो वो गुणित कर्मांशिक नहीं कहलाता। तो गुणित कर्मांश वाले मिथ्या दृष्टि के उपशम सम्यक तो उत्पन्न कराकर क्षावशमिक सम्यक तो उत्पन्न कराया है और फिर दर्शन मोह का क्षपण कराया है। दर्शन मोह के क्षपण के लिए भी पूर्वोक्त तीन करण होते हैं और वहां भी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में गुणश्रेणी आदि कार्य होते हैं। गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये कार्य जहां जहां अपूर्वकरण आदि होते वहां भी होते हैं।
ये भी अनादि मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा कि एक सादी मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा?
अब उसको कोई भी दे ले सकते है, अनादि सादी में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। जैसे जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल चल रहा है
और
वो उसको तो अनादि जैसे हो जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उपशम सम्यक्त को प्राप्त करने के समय और यहाँ पर भी गुणश्रेणी, यह गुणश्रेणी जघन्य परिणामों से ही कराना चाहिए। वहां भी और यहाँ भी गुणश्रेणी जो कराई है वो जघन्य परिणामों से, यानी उसमें पॉसिबल जो जघन्य में जघन्य परिणाम से उपशम सम्यक तो और क्षपणा होती है उसको लिया। क्योंकि यदि पहले उत्कृष्ट आदि परिणामों से गुणश्रेणी कराई जाएगी तो मिथ्यात्व का संचित बहुत द्रव्य गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा निर्जीर्ण हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सम्यक मिथ्यात्व में अधिक द्रव्य का संक्रमण न हो सकने से उसका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकेगा। हमें उत्कृष्ट में उत्कृष्ट संचय किसके होता है उसकी बात चले, तथा यहाँ पर भी उत्कृष्ट परिणामों से गुणश्रेणी कराने पर तीनों प्रकृतियों का बहुत द्रव्य निर्जीर्ण हो जाएगा, क्योंकि तीनों में ही गुणश्रेणी की रचना होती है। उदयावली में नहीं है, परंतु वो तो टर्न होते होते उदय रूप होकर खीर तो जाएगी। उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति कराते हुए यह कहा था कि मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप उदयावली से अति स्थापनावली के पूर्व तक होता है, याद है? अपकर्षण होता है तो अति स्थापनावली ऊपर की छोड़कर नीचे निक्षेपण होता है, परंतु यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप तो उदयावली से ही होता है, किंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप उदयावली में न होकर उससे बाहर गुणश्रेणी और द्वितीय स्थिति में ही होता है। क्या कहना चाहते हैं? वहाँ तो उदयावली से लेकर अतिस्थापनावली के पूर्व तक, और यहाँ जो है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदयावली छोड़कर यहाँ भी अतिस्थापनावली होगी। हाँ, वो तो सर्वत्र होगी, क्योंकि अपने अपने नीचे आवली प्रमाण छोड़कर ही उसका निक्षेपण होता है। तो वहाँ उदयावली से लेकर निक्षेपण था और यहाँ उदयावली को छोड़कर था, परंतु सम्यक प्रकृति में जो उदय रूप है उदयावली के समय से लेकर होगा, उदय के समय से लेकर। यहाँ पर सम्यक प्रकृति के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप तो उदयावली से ही होता है, क्योंकि वो उदय रूप है ना, किंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप उदयावली में न होकर उससे बाहर गुणश्रेणी और द्वितीय स्थिति में ही होता है। अब इसको द्वितीय स्थिति में कहने से भी उपरीतन स्थिति में अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई गैप तो ही नहीं है ना, और उपरीतन स्थिति विशेषार्थ है ना, ये ऊपरी ऊपर की यानी गुणश्रेणी के ऊपर। प्रथम और द्वितीय तब कहते जब बीच में अंतर हो, इसको द्वितीय स्थिति कहने से भी उपरीतन स्थिति कहना अच्छा रहेगा। तो गुणश्रेणी में और उपरीतन स्थिति में दिया जाता है, ख्याल में आई बात? इसका कारण यह है कि जिस प्रकृति का उदय होता है उसके अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप उदयावली से किया जाता है, और जिस प्रकृति का उदय नहीं होता उसके अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप उदयावली में न होकर उससे बाहर ही होता है। ये रूल ख्याल में आई बात? ये वही तो, उसका उदय नहीं है परंतु उसके निषेक एक समय ऊपर पड़े हैं। वहां निषेक नहीं है वो बात नहीं है, निषेक है वहां पर, परंतु उदय रूप नहीं हो रहे हैं, वो तो समय तो में टर्न होकर उदय में आ रहे हैं। हाँ, एक निषेक कम, इतने निषेक है वहां पर, परंतु एक एक समय उदय रूप हो जाएंगे। जैसे अप्रशस्त उपशम चल रहा है, क्षोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अप्रशस्त उपशम है, और जब प्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है तो वहां पर उसका प्रशस्त उपशम था, अंतर वाला उपशम है। क्षोपशम सम्यक्त्व में अप्रशस्त उपशम है, जैसे प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी का उपशम कैसा उपशम है? अप्रशस्त, एक समय ऊपर पड़ा है और अप्रत्याख्यानादि रूप होकर उदय में आता है। ऐसे ही यहाँ पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु निषेक एक समय ऊपर पड़े हैं, उदय के एक समय ऊपर, और वो सम्यक प्रकृति रूप से टर्न होकर उदय में आते हैं। जब हमने स्थिति विभक्ति देखी थी तब जब हमने देखा था अवस्थित स्थिति कैसे किया था, जब वो मिथ्या दृष्टि था तो मिथ्यात्व का एक सादी मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व में एक निषेक ज्यादा था सम्यक प्रकृति से, उदय रूप निषेक, और जो सम्यक तो प्राप्त हुआ तो भी सम्यक तो का उदय रूप एक निषेक ज्यादा होगा और बाकी एक समय ऊपर पड़े रहेंगे, ऐसे वहां देखा था ना, वही बात यहाँ लागू होगी। परंतु उसके उदयावली में एक समय उदय रूप निषेक कम, उदयावली में निषेक तो है परंतु उसमें उदीर्णा होकर द्रव्य नहीं दिया जाएगा, अपकृष्ट द्रव्य उसमें नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर ही गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। और सम्यक प्रकृति में उदयावली में भी आकर मिलते हैं, उसी को उदीर्णा कहने में आती है। गुणश्रेणी तीनों की है, गुणश्रेणी में नहीं, गुणश्रेणी तो भले समान होगी, वो निषेक भी वहीं से होगा, उदयावली के ऊपर ही है सबके, सबकी गुणश्रेणी उदयावली के ऊपर है। हम मान लेते हैं उदयावली में 16 निषेक है, मान लेते हैं, तो हरेक की गुणश्रेणी कहाँ से 17वें निषेक से गुणश्रेणी है।
ये पर यहाँ पे क्या होता है कि जो ये
और सम्यक प्रकृति में उदयावली है 16 समयों की, और इसमें 15-15 निषेक है।
पर यहाँ पे क्या है, इतने सारे अंतर्मूर्ति इतने सखी कांडाकात होते हैं, वहाँ तक तो ये गुण श्रेणी रूप रत्न होती जाती है, तो यहाँ पे जो उदयावली में जो यहाँ पे जो निषेक चल रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे, वो गुण श्रेणी रूपी निर्जरा हो जाएगी।
होने तो ना, गुण श्रेणी निर्जरा तो चलेगी उसके, टर्न होकर चलेगी उसका।
हाँ।
परंतु उसके उदयावली में माल नहीं दिया जाएगा, इतनी बात है। तो जो गुण श्रेणी में दिया है वो निषेक नीचे आएंगे और नीचे आकर सम्यक प्रकृति रूप से टर्न हो जाएंगे और टर्न होकर उदय में आएंगे, इसीलिए उसमें कम देना है माल। इसलिए जो कहा जघन्य परिणाम से करना है, जघन्य परिणाम के कारण उसकी निर्जरा कम होगी, निर्जरा तो हो ही रही है, अन्य प्रकृति रूप होकर उदय हो रहा है। मिथ्यात्व की स्वरूप से उदय निर्जरा नहीं चल रही है, सम्यक प्रकृति रूप होकर उसकी निर्जरा हो रही है, क्योंकि जो प्रकृतियां पड़े कर्म जो है वो उदय रूप होकर ही खिरेंगे, भले स्वरूप से हो या पर रूप से हो, सभी कर्मों की निर्जरा जो है वो एक प्रकार से उदय ही है। ऐसे ही किसी कर्म का क्षय हो गया, बैठे बैठे अंदर परमाणु अंदर ही रह गए, मिट गए, ऐसा नहीं होता है, वो कर्म से अकर्म रूप हो जाएंगे। अभी जैसे हमने क्रोध है मान रूप, मान है माया रूप, इस तरह से उसका क्षय कहते हैं। परमाणु तो परमाणु है ना, तो उसका अंत में जब खिर जाएंगे तो हम कहेंगे सारे परमाणु खिर गए।
आगे ये चौथे गुण स्थान में जो विशुद्धि है और सातवें गुण स्थान में विशुद्धि है प्रथम अष्टम के काल में, वो श्रद्धा की अपेक्षा तो समान ही होगी, खाली यहाँ पे चारित्र की अपेक्षा फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल। परंतु मंद कषाय किसको कहेंगे? विशुद्धि क्या है? मंद कषाय रूप विशुद्धि है। और जो यहाँ हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व में श्रद्धा की अपेक्षा जो निर्मलता है, तत्वज्ञान संबंधी जो निर्मलता है, जो श्रद्धा की निर्मलता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है चौथे वाला हो या सातवें वाला हो। परंतु विशुद्धि किसको कहेंगे? सातवें वाले में जाने की विशुद्धि ज्यादा होगी, कषाय की मंदता अधिक है ना वहां पर, यानी केवल तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है उसका। अब यहाँ नीचे से सातवीं लाइन में क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के केवल सम्यक्त्व प्रकृति का ही उदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, अतः उनके अपकृष्ट द्रव्य के निक्षेपण में अंतर है। निक्षेपण में अंतर है, गुण श्रेणी तो सब में हो रही है। इस प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में गुण श्रेणी रचना को करके अनिवृत्तिकरण के काल में से संख्यात बहुभाग प्रमाण काल के बीत जाने पर दुरापकृष्टि, एक क्र करना, क्रो ये हिंदी में क्रु नहीं कहते, वो क्र क्र ऐसे उच्चार करते हैं, आकृति आकृति दुरापकृष्टि कृष्टि, हम क्र क्रश क्रश कृष्ण नहीं कहे, कृष्ण कृष्ण, दुरापकृष्टि नाम की स्थिति उत्पन्न होती है। स्थिति कांडक घात के द्वारा, अब ये दुरापकृष्टि किसको कहते हैं वो विशेषार्थ में बता दिया उन्होंने कि स्थिति कांडक घात के द्वारा, हमने देखा ना बारंबार स्थिति कांडक घात होते होते स्थिति घटती चली जाती है, तो स्थिति कांडक घात के द्वारा जिस स्थिति सत्कर्म का, स्थिति सत्कर्म ने सत्ता में पड़ी हुई स्थिति घात करते 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 ने बहुत बार स्थिति कांडक घात हो गए, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कर्म शेष रहता है, पहले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रहता है, तब उस सबसे अंतिम पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म को दुरापकृष्टि कहते हैं। अंतिम पल्योपम का असंख्यात भाग का अर्थ क्या है? यानी यहाँ से लेकर असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति कांडक घात होने लगते हैं, क्योंकि पहले भी असंख्यात, पहले के असंख्यात भाग था, परंतु वहां जो स्थिति कांडक घात होता था वो असंख्यात भाग ही होता था। अब इसके आगे क्या होगा? असंख्यात बहुभाग का कांडक होगा।
ये दुरापकृष्टि के पश्चात भी इतने नंबर ऑफ स्थिति कांडक घात होते हैं कि एक ही घात होता है?
बहुत सारे होते हैं, लास्ट में अंतर्मूर्त प्रमाण रह जाएंगे तब तक होते ही रहेंगे। असंख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग कहा है ना यहाँ पर। इसके बाद दुरापकृष्टि नाम की स्थिति के, ये तो है तो पल्ले का असंख्यातवा भाग है, इसके पहले भी पल्ले का असंख्यातवा भाग था, परंतु वहां एक एक स्थिति कांडक घात में पल्ले के असंख्यात भाग इतनी स्थिति कम होती थी। अब इसके बाद क्या होगा, बहुभाग का कांडक होगा। इसके बाद दुरापकृष्ट नाम की स्थिति के असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत से स्थिति खंडों का घात अंतर्मूर्त में करता है, क्योंकि एक अंतर्मूर्त लगता है स्थिति कांडक घात के लिए, एक अंतर्मूर्त लगता है। और ये सारे यहां से लेकर दुरापकृष्टि के बाद जितने स्थिति कांडक होंगे, क्योंकि होंगे तो वो इसी का काल चल रहा है अनिवृत्तिकरण का, वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त में ही होगा। दुरापकृष्टि तक आया वो भी काल अंतर पूरा मिलकर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल भी अंतर्मूर्त ही है। तो दुरापकृष्टि के बाद द्विचरम कांडक तक आया वो भी अंतर्मूर्ति कहलाएगा। अरे एक बार भी एक कांडक घात होता है तो भी अंतर्मूर्त, हजारों बार हो गए तो भी अंतर्मूर्ति कहलाएगा। यही कहते हैं बहुत से स्थिति खंडों का घात, यानी अनेक बार स्थिति कांडक घात होंगे, अंतर्मूर्त करता है तब तक मिथ्यात्व का द्विचरम स्थिति कांडक हो जाता है, यानी उस अंतर्मूर्त काल में क्या होता है वो द्विचरम कांडक घात तक आ जाता है। इसके बाद मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक का आगाल करते हुए अर्थात उसके ऊपर की स्थिति में स्थित निषेकों को प्रथम स्थिति में स्थापित करते हुए उदयावली से बाहर ही स्थापित करता है। इसको आगाल कैसे कहे, द्वितीय स्थिति प्रथम स्थिति कह दी उन्होंने। आगाल प्रत्यागाल तो अंतर के बाद होता है, और यहाँ क्षपणा में कोई अंतर करता ही नहीं है, अपकर्षण करते हुए कहना चाहिए।
यहाँ पे कुछ अलग बता रहे, आगे भी उन लोग द्वितीय स्थिति बताई है,
वो विशेषार्थ में बताइए, मूल में नहीं बताइए। ये उन्होंने उसमें अपूर्वकरण गुणस्थान की अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ऐसा होता है उसमें से निकाल के उन्होंने यहाँ लिखा। क्या कहा मैंने, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में क्या होता है, गुणस्थान की बात है, वहां तो क्षपणा चल रही है चारित्र मोहिनी की, और वहां तो अंतर किया है बीच में, और बीच में अंतर ऊपर, अंतर के ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको आगाल कहते हैं। यहाँ कोई अंतर नहीं है, द्वितीय स्थिति प्रथम स्थिति है ही नहीं है। ख्याल में आई बात, नहीं आई? हाँ मालूम नहीं है, फिर भी मैं क्या कहना चाहती हूँ ये तो समझ में आता है ना। हाँ इसके बाद मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक का घात करते हुए करना, आगाल क्यों लिखा है उन्होंने, ऊपर है ही नहीं, ये विशेषार्थ है ना, स्थिति कांडक का घात करते हुए कहने, या अंतिम स्थिति कांडक में उसके एक एक फाली का निक्षेपण करते हुए ऐसा भी ले सकते, अर्थात उसके ऊपर की स्थिति में स्थित निषेकों को प्रथम के बदले नीचे की स्थिति में स्थापित करते हुए उदयावली से बाहर ही स्थापित करता है। ये बात ठीक है, अभी ये वाक्य में फिर पढ़ती हूँ तीसरी लाइन। इसके बाद मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक का घात करते हुए अर्थात उसके ऊपर की स्थिति में स्थित निषेकों को नीचे की स्थिति में स्थापित करते हुए उदयावली से बाहर ही स्थापित करता है, और ऐसा करके अंतिम स्थिति कांडक की फालियों का सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमण करता है। ऐसा करते हुए जब मिथ्यात्व के उस अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाती है, तब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। एक्चुअली ये पूरा वाक्य यहाँ कुछ गड़बड़ सा लगता है। अंतिम जो स्थिति कांडक घात है, स्थिति भी कम होती है और स्थिति कम होते होते वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से टर्न हो जाती है। अंतिम स्थिति कांडक में ये विशेषता है। क्या कहा? अंतिम स्थिति कांडक का घात हुआ, अब उदयावली के ऊपर का पूरा कांडक ले लेंगे हम, तो पूरा कांडक अभी नीचे उदयावली में तो नहीं आ सकता, तो क्या होगा? वो साधक का सारा सम्यक मिथ्यात्व में जा रहा है। स्थिति कम होके सम्यक मिथ्यात्व रूप हो रहा है,
नीचे की जो उदयावली वाली है वो स्थिति भी सम्यक मिथ्यात्व रूप हो रही है और ऊपर का कांडक
वो भी हो रहा है। अभी समझना, जब अपना क्षपणा का जो विषय चलेगा ना, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी। जागी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसके उदय रूप निषेक है और इसके उदयावली के ऊपर, यानी निषेक तो है परंतु गुणश्रेणी उसके ऊपर है। अभी स्थिति खांडक घात होता है तो क्या होता है? ये आवली नीचे जो आए हैं उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या होगा? अभी अंतिम स्थिति खांडक में ऊपर के निषेक तो नीचे आ ही रह जाते हैं और वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से टर्न हो जाते हैं। एट अ टाइम दोनों ही कार्य चल रहे हैं, स्थिति कांडक घात और वो घात होते होते
नीचे के
एक एक फाली इस रूप होगी, एक एक फाली संक्रमित होगी, सम्यक मिथ्यात्व रूप से होगी
और उसकी स्थिति भी सम्यक तो रूप होगी।
मुख्यतः सम्यक मिथ्यात्व को लिया करण, क्योंकि सम्यक तो रूप होने वाले परमाणु कम है। अभी ये सारा माल सम्यक मिथ्यात्व रूप में चला जाएगा, पहले में पहले। तो ये जो अंतिम एक फाली, दो फाली, तीन फाली, इस तरह से एक एक फाली और अंतिम फाली संक्रमित होगी, तब इसका द्रव्य में मैक्सिमम है सम्यक मिथ्यात्व का। यानी स्थिति का घात होते होते टर्न भी हो रही है, यानी जो कांडक है वो कांडक रूप से ही संक्रमित हो रहा है।
सो डज इट मीन कि ये कांडक की जब ये अंतिम फाली जो संक्रमित होती है तभी नीचे वाला जो एक कावली प्रमाण जो निषेक पड़े थे उसका भी कन्वर्ट हो जाता है,
वो एक एक समय में चला जाएगा।
हाँ, उसका जो कांडक का पूरा स्थिति कांडक का जो समय है वो भी अंतर्मूर्त है,
वो ऊपर है, कांडक ऊपर है और उसके नीचे तो कुछ समय
ऊपर का जो लास्ट वाली जब भी होगी तभी यहाँ का लास्ट निषेक भी जो बाकी है वो भी सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएगा।
नहीं, वो उदयावली में है, जितने उदयावली में एक कम निषेक है उसका।
नहीं, उदयावली में क्या होता है कि उदयावली जैसे नहीं होता है पर उसके ऊपर का पूरा कांडक होता है तभी एक उसके
जब वो कांडक का अंतर्मूर्त चल रहा है। हाँ, वो नीचे का भी एक एक निषेक जाहिर है ना।
हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ,
क्योंकि जितने वहाँ काल चला जाएगा उसमें यहाँ का भी एक एक निषेक टर्न होते चला जाएगा। ये इस सबकी बात की क्लैरिटी जब हम दर्शन मोने के क्षपणा वाला जब पढ़ेंगे तब होगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, और फिर अंतर्मूर्त रुक के फिर समय मिथ्यात्व का टर्निंग चालू हो जाएगा,
वापस विश्राम होके पश्चात। हाँ,
फिर तीन करण परिणाम मान लेगा। यानी स्थिति कांडक घात होता है तो इसकी स्थिति भी कम होती है। हाँ, और समय मिथ्यात्व रूप हो जाती है। हाँ, यानी स्थिति कम होते होते वो मिथ्यात्व रूप से नहीं रहते, समय मिथ्यात्व रूप हो जाते।
तो दोनों कार्य साइमल्टेनियस।
हाँ, एट अ टाइम चालू है ना, पर समझाएंगे इसे। यहाँ एक फाली से दूसरी फाली भी असंख्यात गुना है और वो एक एक फाली जैसे नीचे आती है वैसे समय मिथ्यात्व रूप से भी होती रहती है। तो अंतिम फाली में मैक्सिमम द्रव्य है, और वो जब संक्रमित होगा तो सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मैक्सिमम होगा। सम्यक प्रकृति रूप बाद में सारा जब होगा तब उसमें कहेंगे हम, अभी तो सम्यक मिथ्यात्व रूप से उसकी टर्निंग चालू हो जाएगी। जाएंगे थोड़े जाएंगे, पर बहुत थोड़े जाएंगे। ऐसा लिखा ना, ऐसा करते हुए जब मिथ्यात्व के उस अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाती है, तब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। अब आगे का सूत्र, ये तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में ही ऊहापोह हुआ। अब सम्यक प्रकृति में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामित्व कहेंगे। एट अ टाइम सभी में नहीं होगा, हर एक का अपना अपना काल अलग होगा। तो सम्मतस्सवी तेणेव जम्मी सम्मामिच्छत सम्मत्ते पक्षितम तस्स सम्मतस्स उक्कस्स पदेस संतकम्मम। वही जीव, जीव वही लिया कौन सा, जो गुणित कर्मांशिक है, जो उसने जघन्य परिणाम के द्वारा औपशमिक सम्यक प्राप्त किया है, जघन्य परिणाम के द्वारा गुण संक्रमण किया है, जघन्य परिणाम के द्वारा क्षपणा की है, वही जीव जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त कर देता है, प्रक्षिप्त करना यानी उसके अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली जब उसमें निक्षेपित हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी, तो उसके सम्यक्त्व प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। वही जीव ऐसा कहने से सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले जीव का ग्रहण होता है।
यहाँ पे जो ये स्थिति बनती है जो प्रथम अक्षम के काल में, वहाँ पे सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अलग अलग होगी।
फिर से
जब भी प्रथम अक्षम के काल में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व तैयार होते हैं, तभी उसकी स्थिति में भी वेरिएशन होगा कि दोनों की समान ही होगी?
दोनों की समान है।
तो यहाँ पे जो ये जो सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति कांडक का चल रहा है, वही समय सम्यक्त्व का भी चलेगा,
सब में चलेगा
चलेगा, तो वहाँ पे उसका कांडक का प्रमाण कुछ अलग अलग होगा?
नहीं, कांडक भले उतने ही होंगे, अंत में जाके वो 8 वर्ष की स्थिति रह जाती है ना।
हाँ।
सम्यक प्रकृति में।
हाँ।
उसके पहले स्थिति ज्यादा थी, जैसे अभी हमने पल्ले का असंख्यात्व भाग था।
हाँ।
फिर वो भी घटते गया, फिर घटते घटते मिथ्यात्व वो टर्न हो गया, फिर सम्यक मिथ्यात्व की भी कमती कम होती चली जाएगी, सम्यक प्रकृति की भी। जब सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली सम्यक रूप परिणमित हो जाती है, वो समय 8 वर्ष की स्थिति बाकी रहती है, तो इसकी भी तभी, उसके पहले इसकी भी 8 वर्ष से ज्यादा थी, इसकी स्थिति कम होके सम्यक प्रकृति भी कम हो रही है और सम्यक मिथ्यात्व की भी कम होके टर्न हो रही है। आप लब्धिसार पढ़ना, उसमें ये सारी बातें आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो शंकाकार शंका पूछता है, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला जीव अपने उदयावली बाह्य समस्त प्रदेश समूह को सम्यक्त्व प्रकृति में संक्रांत नहीं करता, क्योंकि अंतर्मूर्त काल के बिना उसका संक्रमण नहीं बन सकता। यानी उसका अंतर्मूर्त लगेगा उसको एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली के लिए, और जब उदयावली बाह्य सम्यक मिथ्यात्व के सब द्रव्य को सम्यक्त्व में संक्रांत करता है, तब उसके सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म नहीं रहता, क्योंकि उस समय अंतर्मूर्त काल प्रमाण गुण श्रेणी और गोपुच्छ का गलन हो जाता है। अतः ये बात ख्याल में नहीं, उदयावली के बाहर के द्रव्य का स्थिति कांड घात और ये संक्रमण होता है। उदयावली में जितने निषेक है वो तो एक एक रूप ही चला जाएगा। तो कहते इसलिए वो उसका उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म नहीं रहा, क्योंकि वो गलते जा रहा है ना, बीच में अंतर्मूर्त प्रमाण विश्राम भी लिया, फिर उसने वो अध प्रवृत्त करण वगैरह किया, तो उतने काल में उसका कुछ ना कुछ गुण श्रेणी में जो आया है माल, वो उदय रूप टर्न होकर फिर तो जाएगा, ये उसका कहना है। इसलिए उसके समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म नहीं रहता, क्योंकि उस समय अंतर्मूर्त काल प्रमाण गुण श्रेणी और गोपुच्छ का गलन हो जाता है। अतः सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले जीव के ही सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, यह बात घटित नहीं होती। समाधान, यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा दोनों स्थानों के एक होने में कोई विरोध नहीं है, अतः उक्त कथन बन जाता है। इसका भावार्थ कहते हैं, भावार्थ यह है कि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म को करके फिर संख्यात हजार, कितने बार संख्यात हजार स्थिति कांडकों के द्वारा अंतर्मूर्त काल को बिताकर जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयावली बाह्य समस्त द्रव्य को, उदयावली बाह्य कहा ना यहाँ पर, सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित करता है, तब सम्यक्त का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। ये सम्यक मिथ्यात्व का है उतना ही होता है या उसी समय होता है, इसी बात का है। भले उसके बाद हजारों बार स्थिति कांडक घात भी होते हैं, उसकी इतनी निर्जरा भी होती है, फिर भी सम्यक्त प्रकृति में मैक्सिमम पॉसिबल कहूँ कब होगी, उसकी अंतिम फाली उस रूप होगी तब। इसी का विशेषार्थ देखते हैं। सूत्र में कहा गया है कि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले जीव के ही सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इस पर शंकाकार का कहना है कि यह बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब उस जीव के सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य रहता है तब सम्यक्त्व का उत्कृष्ट द्रव्य नहीं प्राप्त होता, और जब सम्यक मिथ्यात्व का उदयावली के बिना शेष सब द्रव्य सम्यक्त्व में संक्रांत होता है तब वह सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला नहीं रहता, यानी बाय दैट टाइम उसकी बहुत सारी निर्जरा हो जाती है, क्योंकि तब तक सम्यक मिथ्यात्व के गुणश्रेणी और गोपुच्छाव की निर्जरा हो लेती है। इसका समाधान यह किया गया है, उक्त कथन एक जीव की अपेक्षा से किया है, अर्थात जो जीव सम्यक मिथ्यात्व की सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक मिमी हुआ है ना, क्या कहते हैं, जो जीव वही लिया है उसका काल एक नहीं कि जिस काल में सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है उसी काल में, ऐसा नहीं लिया, वही जीव लिया है। तो जो जीव सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला होता है वही जीव सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही समय में दोनों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होते हैं, किंतु काल भेद से सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला जीव ही सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का भी स्वामी होता है। वही जीव अंतर्मूर्त के बाद सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है। तो उसके काल में, उतने काल में इसका बहुत से द्रव्य गया है, हाँ जाने दो, फिर भी सम्यक प्रकृति में मैक्सिमम तभी कहलाएगा। जिस जीव को पहले में सम्यक मिथ्यात्व का मैक्सिमम था,
यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन नहीं बताइए किसका द्रव्य,
वो अल्पभूतों में करेंगे।
अच्छा,
हर एक के उत्कृष्ट, हर एक के जघन्य का जो कोई हिसाब लगाना है वो अल्पभूत में बताए। अभी तो स्वामित्व चला है, उसका उत्कृष्ट किस कब है, इसका उत्कृष्ट कब है, उसमें स्वामित्व की या अल्पभूत की बात बाद में आई है। सम्यक्त्व का यह उत्कृष्ट प्रदेश संचय भी मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संचय से असंख्यात्वे भाग प्रमाणहीन होता है। ख्याल में आई बात, क्योंकि बाय दैट टाइम उसकी निर्जरा हो जाती है, क्योंकि गुणश्रेणी के द्वारा जो द्रव्य निर्जीर्ण हो जाता है वह सब द्रव्य मिथ्यात्व के उत्कृष्ट संचय के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। ये बात ख्याल में आई, ये वाक्य का अर्थ, मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट प्रदेश संचय है उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो ये उसके असंख्यात्वे भाग ही नहीं, क्योंकि उसका असंख्यात्व भाग अब तक निर्जीर्ण हो गया। एक समय प्रबद्ध की स्थापना करके डेढ़ गुणहानि से गुणा करने पर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। क्या कहना चाहते हैं? किसी भी कर्म की सत्ता में कितना कर्म पड़ा रहता है, एक समय प्रबद्ध गुणा डेढ़ गुणहानि, ये उसका उत्कृष्ट द्रव्य है। उस उत्कृष्ट द्रव्य में उसके योग्य असंख्यात गुणे तत्प्रायोग्य उत्कर्षण अपकर्षण भागार के द्वारा भाग देने पर क्या कहते हैं? ये जो उत्कृष्ट द्रव्य है उसको किससे भाग देना है? तो कहते हैं अपकर्षण भागार से,
उसको असंख्यात गुणे की है।
हाँ, वो भागार को असंख्यात गुणा कह रहे, उसके योग्य असंख्यात गुणे तत्प्रायोग्य उत्कर्षण अपकर्षण भागार के द्वारा भाग देने पर जो लब्ध आवे वह सम्यक्त प्रकृति का एक समय में गुणश्रेणी के द्वारा गलने वाला उत्कृष्ट द्रव्य है, और उसके असंख्यात विभाग प्रमाण नीचे नष्ट हुए कुल द्रव्य का प्रमाण है। यानी यहाँ पर एक समय में गलने वाला सम्यक प्रकृति का जो द्रव्य है उससे भी असंख्यात विभाग का द्रव्य अभी तक गल गया है, क्योंकि हर समय असंख्यात गुणा द्रव्य गलेगा, तो इसके पूर्व में गल गया है वो उससे भी असंख्यात वा भाग है, क्योंकि यहाँ अपकर्षित द्रव्य की प्रधानता पाई जाती है, अपकर्षण होने वाला द्रव्य अधिक से अधिक होगा यहाँ पर। यतः नष्ट द्रव्य, यतः ने क्योंकि नष्ट द्रव्य का प्रमाण इतना है, अतः बाकी का सब मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक रूप से अवस्थित रहता है, ऐसा इस सूत्र का भावार्थ लेना चाहिए। किंतु सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य से ये ख्याल में आई कुछ?
हाँ।
सम्यक का उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सम्यक का ओरिजिनल द्रव्य भी उसमें कंसीडर करना है,
इसीलिए मैंने पूछा।
क्योंकि गुणश्रेणी के उदय से निर्जर्ण होने वाले द्रव्य की अपेक्षा गुण संक्रम के द्वारा सम्यक्त रूप से परिणत हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा होता है। क्या कहते हैं? इसमें जो गुणश्रेणी है, यहाँ पर क्षपणा के काल में जो गुणश्रेणी से नीचे द्रव्य आएगा उससे भी गुण संक्रमण होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। अलग अलग जगह अलग अलग उसका प्रमाण होगा, गुण संक्रमण ज्यादा है कि गुण श्रेणी ज्यादा है, ये तो जहां की जहां कौन सा प्रोसेस चल रहा है उस पर निर्भर है। शंका, वह द्रव्य असंख्यात गुणा है, कौन सा? गुण संक्रमण वाला असंख्यात गुणा है, इस प्रमाण से जाना जाता है। तो कहते आगे कहे जाने वाले प्रदेश विषयक अल्प भूतों का कथन करने वाले सूत्र से जाना जाता है। अब इसी का हम देखेंगे विशेषार्थ। क्रम यह है कि जिस समय मिथ्यात्व का पूरा संक्रमण होता है उस समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की बची हुई स्थिति के बहुभाग का घात करता है, और इस प्रकार संख्या स्थिति कांडकों का पतन करके जब सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में संक्रमण करता है तब सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ये बहुभाग का घात होता चला है, क्योंकि वो दुरापकृष्टि तो पार कर दी ना उसने, तो अभी यहाँ पर भी जो स्थिति कांड घात हो गए बहुभाग बहुभाग हो गए, तो उसका स्थिति कांड घात तो चल रहा है यहाँ पर। इससे एक बात तो यह ज्ञात होती है, जिस समय मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में पूरा संक्रमण होता है उससे सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में संक्रमण होने के लिए अंतर्मूर्तकार और लगता है, क्योंकि एक अंतर्मूर्त के काल के बाद उसकी बात वो पूरी हो जाएगी। इसलिए सूत्र में आए हुए तेने व पदकार्थ, तेने मैंने उसी जीव के, वही जीव लिया ना, सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले के ही सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, ऐसा न कह करके जो यह सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला जीव है वही आगे चलकर की बात है ना, उसी समय उसको नहीं है। आगे चलकर सम्यत्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला होता है, ऐसा करना चाहिए। जीव वही है परंतु उसी पॉइंट पर उसका उत्कृष्ट नहीं। जब सम्यक मिथ्यात्व टर्न हो जाएगा पूरा संक्रमित, तब उसके होगा। जीव वही लिया है जिसके पहले सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट था, वही जीव जब सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा यानी पूरा संक्रमण होता है, तब उस जीव के सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट होगा। देखो हाँ, पहले तेने वक पद का अर्थ देखो, सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले के ही, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला होता है, यानी एक ही समय में दोनों होते हैं ऐसा अर्थ नहीं करके कोई ऐसा भी अर्थ उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो संदिग्ध है वाक्य। ऐसा उसमें से ऐसा कोई अर्थ न निकाले इसलिए फिर उसको और विस्तार से बताया। उसी जीव को, वही जीव परंतु उसी समय में नहीं, एक अंतर्मूर्त पश्चात, उसी जीव को बाद में, हाँ इसलिए आगे चलकर। अब इस योग्यता वाला आगे चलकर कब होता है, इसका खुलासा मूल सूत्र में ही किया है कि जब सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में पूरा संक्रमण करता है तब इस योग्यता वाला होता है। जीव वही है परंतु वही जीव वो तो कब का था, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में करने वाला था, वही जीव आगे
पूरा
संक्रमण सम्यक प्रकृति में होगा तब उसको लेना।
तो यहाँ पे ये पूरा बताया इसलिए इसे ले सकते हैं क्योंकि जब भी ऊपर कांडक घात होते उसी समय नीचे जो ये उदयावली है उसका भी एक एक दिशा एक टर्न होता जाता है।
उदयावली को, उदयावली के ऊपर का ही पूरा संक्रमण होता है, उदयावली तो एक एक निशेक संक्रमित होगा, ये बात पहले बता चुके वो लोग।
अच्छा,
उदयावली में नहीं लेना, वो कांडक रूप से जो फाली रूप से जाता है
उसको ही लेना,
वो उदयावली के ऊपर के ही फाली रूप से जाते हैं। उस समय उदयावली का भी एक एक निशेक नीचे की जाएगा, उसके बाद अलग है।
हाँ।
उसी समय उसका भी
टर्न होता,
होता जाता है।
यहाँ पे इसे लिखा है ना, सम्यक में पूरा संक्रमण करता है।
देखो तो पूरा संक्रमण है, उसमें पूरे के पूरे निषेक बहुत सारे पड़े हैं, मान लेते अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक है।
हाँ।
उसका पूरे सभी निषेकों में थोड़ा माल गया, सभी निषेकों में थोड़ा माल गया।
हाँ।
सभी निषेकों में थोड़ा माल गया, और जो अभी उदयावली में है वो नीचे का एक निषेक उदय रूप आया, एक निषेक उदय रूप आया, एक निषेक उदय रूप आया।
तो लास्ट फाली यहाँ पे जब
अभी उसके कंपैरिजन हम नहीं करेंगे कि उसके लास्ट फाली के साथ इसका लास्ट निषेक जाता है,
ऐसे नहीं हो सकता,
ऐसे हम नहीं कहेंगे क्योंकि क्योंकि जब वो चल रहा है।
हाँ।
देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा हम कह सकते हैं क्यों, अभी ऊपर हमने छह निषेक लिए, ये उदयावली के ऊपर है और उदयावली के अभी छह नहीं ज्यादा लेने पड़ेंगे, फिर भी हम यहाँ चार निषेक लेते हैं, ऊपर और ज्यादा निषेक ले लो ना, हमारा क्या जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से एक फाली गिरी, इसका एक निषेक गया और एक निषेक उदयावली में आया, ऊपर भी नीचे लाओ उसको। हाँ,
नीचे आता जाता है।
अभी इसका एक और चला गया, ये गया, इसका एक आया,
तो यहाँ पे जो खाली रूप जो जाता है वहाँ पे एक एक नीचे उदयावली में जाता है, तो
जाएगा,
उसका माल नहीं जाएगा वहाँ
पे, उसका माल नीचे आएगा। ये तो होगा कि नहीं होगा।
हाँ हाँ।
तो आप जो कहते हैं इसके साथ ये उदयावली चली जाएगी,
नहीं वो नहीं हो सकता,
तो एक एक नीचे जब स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, ऊपर ये सारे स्थितियों का कांडक घात होगा, तो नीचे से एक एक स्थिति उदयावली में आ रही है, जब अंतिम फाली जाएगी,
तो भी एक,
इसमें तो इसमें जितना है उतना तो रहेगा ही, जब ये चली जाएगी तो ये तो ऐसा ही रहेगा, जो एक एक करके सम्यक प्रकृति रूप होने वाला है। ख्याल में है? एक को पकड़ो दूसरे छूट जाए।
ये पूरा द्रव्य लिखा है इसीलिए,
पूरा द्रव्य इसलिए लिया कि संक्रमण उसका हो गया, हो रहा है, खाली रूप से संक्रमण हो रहा है, गुण संक्रमण हो रहा है। ये बात उन्होंने पहले ही बता चुकी, उदयावली के ऊपर का संक्रमण का टाइम देखो 88 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति के उदयावली बाह्य समस्त द्रव्य को सम्यक तो प्रकृति में संक्रमित करता है, तब सम्यक तो का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। उदयावली के बाह्य कहा ना, क्योंकि एक एक निषेक उदयावली में आता रहेगा ना। अच्छा है, प्रश्न पूछते हैं, हमारी क्लैरिटी और होते है।
हमारा कंफ्यूजन
नहीं नहीं। आप प्रश्न नहीं पूछते तो हम उस पर विचार क्यों करते हैं? प्रश्न पूछते तो ये सोचना भी होता है और फिर उसका उत्तर भी मिल जाता है। अब देखो है ना समय। हाँ तो हमने ये वो पढ़ा ना, वही आगे चलकर सम्यक्तो का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाला होता है। अब इस योग्यता वाला आगे चलकर कब होता है, इसका खुलासा मूल सूत्र में ही किया है कि जब सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्तो में पूरा संक्रमण करता है तब इस योग्यता वाला होता है। ये उदयावली के ऊपर वाला पूरा संक्रमण है। उदयावली में वो एक निशेक उसमें कम है, फिर भी उसकी स्थिति कितनी उदयावली प्रमाण है, यानी उदयावली के ऊपर का पूरा संक्रमण होता है। इतने काल के भीतर यद्यपि इस जीव के सम्यक मिथ्यात्व की अंतर्मूर्त काल वाली गुण श्रेणी का और उदयावली प्रमाण गोपुच्छा का है ना गलन हो जाने से, क्योंकि एक एक निशे उदयावली में आता रहेगा तो उसका भी गलन हो जाने से सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश नहीं रहते। सम्यक मिथ्यात्व के उस समय नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें से कुछ तो चले जाएंगे, तब भी उस समय सम्यक्तो का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि हमारी कंपैरिजन सम्यक्तो और सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है। सम्यक प्रकृति के अधिक से अधिक कब होता है उसकी बात चल रही है, क्योंकि उक्त गलित द्रव्य को छोड़कर सम्यक मिथ्यात्व का शेष सब द्रव्य तब तक सम्यक्तो को मिल जाता है, इसलिए उसका प्रदेश सत्कर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमने तो पहले देखा सम्यक प्रकृति का ऑलरेडी है और उसमें ये आके मिला है तो उसके उत्कृष्ट से उसका उत्कृष्ट ज्यादा है, ऐसा भी हमने देखा था। यही कारण है कि गुणित कर्मांश वाले जीव के जब सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में पूरा संक्रमण होता है तब सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म कहा है। यद्यपि इस प्रकार सम्यक्तों का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म प्राप्त होता है तो भी उसका प्रमाण कितना है, यह एक प्रश्न है जिसका खुलासा करते हुए वीरसेन स्वामी ने दो बातें कही है कि ऊपर ही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, कही है ने बताई है, और कहीं का अर्थ होता है कहां ही, कहीं कहीं पाया जाएगा, वो कहीं नहीं है, कही है बताई है, बिना बिंदी वाला ही चाहिए। प्रथम तो यह कि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म से असंख्यात्वा भाग कम है, ये अल्प बहुत तो बता रहे। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट, इसमें सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म जो है वो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के असंख्यात्व भाग कम है। और दूसरी बात यह कि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म से विशेष अधिक है, हमें ऐसा लगता है ना वो उससे कम होगा, पर अल्प बहुत में क्या लिया है, सम्यक मिथ्यात्व का कम उत्कृष्ट में, फिर सम्यक्त्व का और फिर मिथ्यात्व
संख्या।
पहली बात के समर्थन में वीरसेन स्वामी ने यह हेतु दिया है कि गुणश्रेणी के द्वारा जितना द्रव्य गल जाता है वही अकेला मिथ्यात्व के प्रदेश सत्कर्म के असंख्यात्वे भाग है, और अधस्तम गलना के द्वारा जो और द्रव्य गला है वह अतिरिक्त है, यानी वो एक्स्ट्रा है। इससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म से सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म असंख्यात्वा भाग कम होता है। विशेष खुलासा इस प्रकार है कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म गुणित कर्मांश वाले जीव के सातवें नरक के अंतिम समय में होता है। ये तो बात ख्याल में है अम्बा, तब इसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं पाई जाती। क्या कहा है,
26 प्रकृति
शादी भी नहीं है जहाँ 28 प्रकृति वाला। हाँ उदीर ना हो गई होगी, हो सकता है, परंतु 28 की सत्ता वाला नहीं होगा, 26 की वाला होगा। अब यही जीव जब वहां से निकलकर और तिर्यंज के 2-3 भव लेकर मनुष्य होता है और 8 वर्ष का होकर अंतर्मूर्त में उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है और इस प्रकार मिथ्यात्व 3 भागों में बढ़ जाता है। अनंतर अंतर्मूर्त में दर्शन मोनी की क्षपना करता है और तब मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में संक्रमित करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व का उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ विचारणीय बात यह है, एक मिथ्यात्व का द्रव्य ही जो कि सातवें नरक के अंतिम समय में उत्कृष्ट था वही आगे चलकर 3 भागों में बंटता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के समय मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की गुणश्रेणी निजरा उसी में से होती है, यानी वहीं से सम्यक प्राप्ति के समय भी गुणश्रेणी शुरू हो गई और अंत में वही गलित से शेष बचकर यानी गलितावशेष जिसको कहें, जो निकल गया उसको छोड़कर जो बचा है उसको कहेंगे गलित से शेष बचकर सबका सब सम्यक्त रूप परिणमता है। तो वह मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य से कम होना ही चाहिए क्योंकि पहले उसकी निर्जरा हो गई है। तो वो तो मूल जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब कहा था, नारकी के, उसके बाद औपशमिक सम्यक्त हुआ, अनंतानुबंधी की विसर्जना हुई, दर्शन होने की क्षपणा हुई, तो गुण श्रेणी में भी गया है, तो वो तो कम है, ये तो ठीक है। अब कितना कम है, तो वो कम तो है परंतु कितना कम है, इस प्रश्न का यह खुलासा किया अपकर्षण उत्कर्षण भागहार के द्वारा सब द्रव्य का असंख्यात्वा भाग ही गुणश्रेणी में प्राप्त होता है, क्योंकि हमने अपकर्षण भागहार के द्वारा भाग दिया था। तो असंख्यात्वा भाग ही नीचे आता है, अतः इतना कम है। यहाँ अधस्थिति गलना के द्वारा जितना द्रव्य गल गया उसकी विवक्षा नहीं की, क्योंकि नीचे से पूरा एक एक निषेक चला जाएगा। अपकर्षण में तो थोड़ा ही नीचे आता है, पर जो उदय रूप निषेक है वो एक एक निषेक चला जाएगा, एक समय में एक एक निषेक, उसकी विवक्षा छोड़ दी है, क्योंकि वह गुणश्रेणी के द्रव्य के भी असंख्यात भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा,
गुणश्रेणी में
गुणश्रेणी के निषेक कितने हैं, अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त में कितने समय होते हैं,
असंख्यात,
और नीचे अधस्त गलना के द्वारा एक एक निषेक गलता है, तो उदय रूप जो होगा उसका असंख्यात भाग है। यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण भागार को जो असंख्यात से गुणित किया गया और फिर उसका जो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य में भाग दिया, पहले हमने पढ़ा था ना कि वो अपकर्षण भागार को भी असंख्यात गुणा कर दो और उसके द्वारा मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग दो और उसका उतना अपकर्षण कराओ। उसका कारण यह है कि अपकर्षण उत्कर्षण भागहार की क्रिया बहुत काल तक चलती रहती है, जिसका प्रमाण असंख्यात समय होता है। असंख्यात समय तक है, इसलिए उसको डायरेक्ट असंख्यात गुणा कर दिया। तथा दूसरी बात के समर्थन में यह हेतु दिया है कि सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होने पर उसमें से गुण श्रेणी को जितना द्रव्य मिलता है, उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक्त्व को मिलता है। क्या कहा? यहाँ पर जो गुण श्रेणी में अपकर्षित द्रव्य होता है, उससे भी असंख्यात गुणा गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व रूप होता रहता है। अंतिम फाली होने के पहले पहले सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक्त रूप परिणाम चल रहा है, यानी केवल अंतिम फाली का द्रव्य नहीं गिनना है, ऑलरेडी सम्यक्त रूप परिणमित होते होते जो बचा है गुण श्रेणी में भी आता है और गुण संक्रमण भी होता है। गुण संक्रमण वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है, तो ऑलरेडी सम्यक प्रकृति में जाता रहा वो, और अंतिम फाली भी जब उस रूप होगी तब उसका द्रव्य मैक्सिमम होगा। क्या कहते हैं? उसमें से सम्यक मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट द्रव्य होने पर भी गुण श्रेणी को जितना द्रव्य मिलता है, उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक्त्व को मिलता है गुण संक्रमण के द्वारा। और इस प्रकार सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के समय उसका कुल संचित द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट संचय से अधिक हो जाता है। तात्पर्य है कि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट संचय के समय सम्यक्त्व का जितना संचय है, वह गुणश्रेणी रूप से सम्यक मिथ्यात्व के गलने वाले द्रव्य से बहुत अधिक है। क्या कहना चाहते हैं? जब सम्यक अभी समय वही लिया, सम्यक मिथ्यात्व का जिस समय उत्कृष्ट संचय है, किस समय है? जब मिथ्यात्व का पूरा संक्रमण होता है तब, उसी समय सम्यक्त्व का द्रव्य उससे भी अधिक है, क्योंकि उसमें भी गुण संक्रमण होता रहा। कि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट संचय के समय, समय वही लिया, सम्यक्त्व का जितना संचय है वह गुणश्रेणी रूप से सम्यक मिथ्यात्व के गलने वाले द्रव्य से बहुत अधिक है। क्या कहना चाहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व का इतना द्रव्य है, जब अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक प्रकृति रूप होगा तो उसमें से इतना सारा द्रव्य गल जाएगा, परंतु जितना गल जाएगा ना, उससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम्यक्त्व का द्रव्य बहुत है। तो गलने वाले से उसका ऑलरेडी ज्यादा है, और फिर गलने वाले को छोड़कर जो शेष द्रव्य संक्रमित होता है और पहले वाला है उसको लेकर दोनों का जो द्रव्य है, तो सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य से सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक होगा। और फिर इसमें गुणश्रेणी के द्वारा जितना द्रव्य गलता है, उसके सिवा सम्यक मिथ्यात्व का शेष सब द्रव्य आ मिलता है। अब यदि सम्यक्त्व के इन दोनों द्रव्यों को जोड़ा जाता है तो उसका सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य से विशेष अधिक होना स्वाभाविक है। ये विशेष अधिक क्यों है, उसके कारण मीमांसा है। ख्याल में ये बात? तीन प्रकृतियां तैयार हुई थी, तो जब मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया है तो सम्यक प्रकृति में ऑलरेडी कुछ थे कि नहीं थे, उसका भी संक्रमण होता रहा था, तो इसलिए उसमें ऑलरेडी परमाणु ज्यादा थे, और जिसका अंतर्मुहूर्त में इसके गल गए उससे भी वो ज्यादा थे। यही कारण है वीरसेन स्वामी ने सम्यक्त्व के उत्कृष्ट द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट द्रव्य से विशेष अधिक बतलाया है। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देतो। अश्विन भाई।
नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सब वज्राणं,
नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायनम नमो वज्रणम नमो लोहे सुभवसावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायनम नमो वज्रणम नमो लोहे सुभवसावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम।